बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आज आप सब कुशल हैं और परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले अध्ययन में हमने मत्ती की पुस्तक में से राई का दाना और स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है को देखा था, जिसमें खमीर को दुष्ट के रूप में दर्शाया गया है। आज हम उसके अगले दृष्टांतों को देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 44 पद में आरंभ होता है, जमीन में छिपे हुए धन का दृष्टांत। तो आइए हम इस पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मित्रों, यहाँ पर इसराइल धन और भूमि संसार है और मनुष्य का पुत्र मनुष्य है जिसने इसराइल जाति को छुड़ाने या बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। यह ऐसा नहीं है कि एक पापी सुसमाचार खरीद रहा है, बल्कि सुसमाचार भूमि में नहीं छिपा है। जो भी हो, आज इसराइल संसार में दफन हो चुका है। किसी ने कहा कि ठीक है, पर वे अभी एक राष्ट्र हैं। यह सच है, परंतु वे निश्चय ही समस्या में हैं। वे उस भूमि का आनंद नहीं ले पाएंगे जब तक कि वे प्रभु यीशु मसीह से उसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं। मुझे एक समाचार पत्र मिला जिसमें इसराइल के बारे में कुछ लिखा हुआ था और जिसमें कुछ निश्चित वैज्ञानिकों के सम्मेलन के बारे में लिखा था। इब्रानी और अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा हुआ था कि विज्ञान इस भूमि पर शांति प्रस्थापित करेगा। यह उनके स्टेज में टंगा हुआ था। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विज्ञान इसराइल और न ही किसी देश में शांति लाएगा। सिर्फ शांति का राजकुमार ही इसे कर सकता है। वास्तव में इसराइल पूरे संसार में खो चुका है और यहूदियों की अधिक संख्या इसराइल में नहीं है, परंतु यह न्यूयॉर्क शहर में है और यहूदी लोग पूरे संसार में फैले हुए हैं। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में इसराइल के साथ परमेश्वर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो उसके 11 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, अतः मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं, क्योंकि मैं भी तो इसराइली हूँ, इब्राहिम के वंश और विन्यामिन के गोत्र से हूँ। परमेश्वर ने अपने प्रजा को त्याग नहीं दिया है जिसका उसे पूर्ण ज्ञान था। पौलुस विश्वास करता है कि परमेश्वर ने इसराइल को त्याग नहीं दिया है। जकरिया, जो पुराने नियम की पुस्तक का एक आखिरी लेखक है, वह लिखता है कि इसराइल के लिए एक नया दिन आएगा। जकरिया के पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं उन्हें मिश्र देश से लौटा लाऊंगा और अशूर से इकट्ठा करूंगा तथा मिलाद और लेबनान के देश में यहां तक भरता जाऊंगा कि उनके लिए जगह शेष ना रहेगी। मित्रों, यर्मिया भविष्यवक्ता अपनी पुस्तक के कई परिच्छेदों में इसराइलियों को पुनः इकट्ठा करने और परमेश्वर द्वारा उन्हें उनकी भूमि में लाने की बात करता है, परंतु वह समय अभी भी भविष्य में है। जब परमेश्वर उन्हें एकत्रित करेंगे तो वह एक बड़े चमत्कार के द्वारा होगा कि वे अपने मिश्र देश से अद्भुत छुटकारा को भी भूल जाएंगे जिसे उन्होंने किसी अन्य धार्मिक छुट्टियों से अधिक मनाया है। परमेश्वर का इसराइल देश के साथ कार्य पूरा नहीं हुआ है और यह दृष्टांत इस वास्तविकता को बहुत अच्छे से और बहुत स्पष्ट रीति से हमें बताता है। इसराइल वह धन है जिसे भूमि में छिपाया या दबाया गया है और मसीह वह है जो आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। वास्तव में उसने राष्ट्र को छुड़ाने के लिए अपने आप को ही दे दिया। हमारे प्रभु ने उन्हें अपने लहू से खरीद लिया जैसे उसने अपने और मेरे उद्धार को खरीदा है। जकर्याह पवित्रीकरण के बारे में लिखते हैं जो यीशु मसीह के पृथ्वी पर दूसरे आगमन के समय होगा। जकर्याह की पुस्तक उसके 13 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए अपने पाप और अपनी मलिनता धोने को एक श्रोता बहाया जाएगा। मित्रों, आगे हम देखते हैं बहुमूल्य मोती का दृष्टांत, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 45 और 46 पद में पढ़ते हैं। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। मित्रों, इस दृष्टांत की प्रचलित व्याख्या कहती है कि पापी एक व्यापारी है और बहुमूल्य मोती मसीह है। पापी अपना सब कुछ बेचता है जो उसका है, ताकि वह मसीह को खरीद सके। एक गीत में इस तरह कहा गया है, मैंने अति अनमोल मोती को पा लिया है और मेरा हृदय आनंद से गाता है। मैं गाता हूँ क्योंकि मसीह मेरा है। मसीह मेरे गीत को नियोजित करने वाला होगा। मित्रों, मैं इस व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ और मैंने इसे अयोग्य सोच विचार करने के कारण हटा दिया है। आरंभ करने के लिए देखें कि कौन अच्छे मोतियों के इंतजार में है। क्या पापी उद्धार पाने के इंतजार में है? मेरे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है और सेवक होने के नाते ना तो मेरा ऐसा कोई अनुभव है। पापी उद्धार पाने की प्रतीक्षा में नहीं है। पापी व्यक्ति व्यापारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है जिससे कि वह कीमत चुकाए। आरंभ करने के लिए वह मसीह का खोज नहीं कर रहा है। यदि वह कर भी रहा था तो वह मसीह को कैसे खरीद सकेगा? व्यापारी के पास जो कुछ भी है वह उसे बेचता है। एक पापी कैसे सब कुछ बेच सकता है, क्योंकि वह पाप में और अपराध में मरा हुआ है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 1 पद में हम देख सकते हैं। आगे शास्त्र हमें बताता है कि मसीह और उधार बेचने के लिए नहीं है। उधार एक दान अर्थात तोहफा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में हम पाते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आगे हम रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 23 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह में अनंत जीवन है। मित्रों, इस दृष्टांत की सही व्याख्या मसीह को व्यापारी के रूप में प्रकट करती है। वह अपने स्वर्गीय घर को छोड़कर इस पृथ्वी पर बहुमूल्य मोती को ढूंढने के लिए आया। उसने खोए हुए पापियों को पाया और अपने बहुमूल्य लहू को बहाने के द्वारा उनके लिए मर गया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया जो उसके पास था, ताकि वह हमें खरीदे और हमें परमेश्वर को पुनः वापस दे। पौलुस ने यह बात कुरिन्थ के वासियों से कहा, दूसरों कुरिन्थियों की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि धनी होते हुए भी वह तुम्हारे लिए निर्धन बन गया, कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। मित्रों, वो हमें परमेश्वर को वापस लौटाता है। उसने हमें खरीद लिया है। तो आइए हम अब थोड़े समय के लिए मोती को देखें। मोती कलिसिया को दर्शाता है। यह मोती हीरे के समान एक पत्थर नहीं है, यह जीवित अंगों से बना हुआ है जो एक कलिसिया है। बालू का एक कण या कोई बाहरी द्रव्य स्वयं से एक छोटे समुद्री जीव के कवच में अनुचित रूप से प्रवेश करता है, जो इसे कष्ट और हानि पहुंचाता है। जीव की प्रतिक्रिया है कि वह स्राव को बाहर निकाले, जो बाहरी द्रव्य पर आवरण चढ़ाता है और यह ढकता है, और वह तरल पदार्थ बढ़ता ही जाता है जब तक कि वह एक मोती नहीं बन जाए। यह कोई मणि या हीरा नहीं है, परंतु एक सुंदर सफेद मोती है। मित्रों, मोती अन्य रत्नों के समान नहीं है। इसे सुंदर बनाने के लिए काटा नहीं जा सकता। यह संपूर्ण रूप से बना होता है, और जिस क्षण आप उसे काटते हैं तो आप इसे नष्ट कर देते हैं। मित्रों, इसराइलियों के द्वारा मोती को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। हमें शास्त्र के कई पदों में इस प्रभाव को देखते हैं। उदाहरण के लिए अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय और उसके 18 पद को देखें, जिसमें मोती की तुलना मणि के साथ की गई है। यद्यपि यहूदियों के मध्य में मोती का महत्व नहीं था, परंतु गैर यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जब मसीह ने पद 45 में अच्छी मोती का उदाहरण लिया, तो मैं सोचता हूं कि उसके शिष्य आश्चर्यचकित हुए होंगे कि ऐसा उसने क्यों किया। पूर्वी देश के लोग मोती के प्रतीक का अर्थ निर्दोष और पवित्रता से लेते थे, जो केवल राजाओं और अधिपतियों के लिए ठीक बैठता है। मित्रों, इस बात को मन में रखते हुए आइए हम फिर से इस दृष्टांत को देखें। मसीह इस पृथ्वी पर व्यापारी व्यक्ति के रूप में आया। उसने मनुष्य को पाप में पड़े हुए देखा और मनुष्य के पाप को अपने ऊपर ले लिया और अपने देह में उठा लिया। हमारा पाप उसके ऊपर अनुचित रूप से डाला गया। उसने हस्तक्षेप किया और यह वही बाहरी द्रव्य था। उसे हमारे लिए पापी बनाया गया, जैसा कि किसी ने इस तरीके से कहा है कि मैं मसीह के हृदय में उसके भाले के घाव में से होकर गया। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, मसीह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। मित्रों, पापियों के प्रति मसीह की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। वह हमारे चारों ओर अपनी धार्मिकता को रखते हैं और वह हमें अपनी धार्मिकता के सफेद वस्त्र से ढकते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, हम उसके हाथ की कारीगरी हैं जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। मसीह हमें उस रूप में नहीं देखते हैं जो आज हम हैं, परंतु उस रूप में देखते हैं जैसे कि एक दिन हम उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करें जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मसीह ने अपना सब कुछ बेच दिया जो उसके पास था, ताकि कलीसिया को प्राप्त कर सके। पहला योना के पत्र 3 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि वह उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मित्रों, जब हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो हम नए यरूशलेम के विश्लेषण को पाते हैं, जो कलीसिया का भविष्यकालीन घर है। शहर के बाहर के प्रतीक पर ध्यान दें, वहां के फाटक मोतियों से बने हैं। मित्रों, यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह मसीह के द्वारा इसी रीति से योजनाबद्ध परिकल्पना है। वह एक व्यापारी है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। अब हम आगे समुद्र में जाल फेंकने के दृष्टांत को देखते हैं, जिसे हम मत्तयि सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 47 पद से लेकर के 39 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग का राज उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए और उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को टोकरियों में इकट्ठा किया पर बुरी को फेंक दिया। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा, यहाँ पर शब्द युग या संसार यूनानी भाषा में युवान है, जिसका अर्थ है युग। बाइबल इस युग के अंत के बारे में नहीं सिखाती है। यह सच है कि समय का बंधन नहीं होगा, परंतु तब अनंत काल शुरू होता है, और जहां तक मेरा मानना है कि इसके अंतर को नहीं बता सकता हूँ, और मैं ऐसे किसी व्यक्ति से भी नहीं मिला जो मुझे बता सके। इस युग के अंत का एक साधारण अर्थ या समय है जब मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएंगे। मित्रों, मत्तयि सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 50 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और उन्हें आग के भट्ठे में डाल देंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। हमारे प्रभु इस भाग को स्पष्ट करते हैं कि खो जाना एक भयानक बात है। मित्रों, एक वैज्ञानिक समाचार पत्र को बड़े रुचि लेकर पढ़ रहा था, और यह उन वैज्ञानिकों के द्वारा लिखा गया था जो निश्चित वैज्ञानिक प्रमाणों को प्रस्तुत कर रहे थे, और अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित उनका मुद्दा था कि विज्ञान बहुत सी बातों के विषय के लिए निश्चित नहीं है, कि एटम बम का विस्फोट क्या कर सकता है। वे जैविक युद्ध के परिणाम के विषय के लिए निश्चित नहीं थे। उन्हें गर्भ निरोधक दवा के परिणाम के विषय में भी निश्चितता नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी बातों को बताया गया था। तब एक वैज्ञानिक ने इस प्रकार से कहा, यह अनंत काल की बातों के जैसा है। हो सकता है कि आपको पता न चले कि स्वर्ग या नरक भी है या नहीं, परंतु आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप निश्चय कर लें कि आप स्वर्ग में ही जाएंगे, क्योंकि यदि गलती से आप गलत होते हैं तो भी आप सही जगह पर होंगे, परंतु यदि आप गलत होते हैं तो यह निश्चय ही है कि आपका बहुत बुरा होने जा रहा है। और हमारे प्रभु ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अंततः यह बहुत ही बुरा होने वाला है। आज हमारे दिनों में एक सभ्य व्यक्ति होना जटिल बात समझा जाता है। यदि आप नरक के अस्तित्व का इनकार करते हैं तो निश्चित रूप से आप ईमानदार व्यक्ति नहीं समझे जाएंगे। परंतु मेरे प्रिय मित्र, आप वास्तविकता में इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं? हो सकता है कि आप कहेंगे कि आप भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक बात है, परंतु इस पुस्तक के अंदर क्या है उसे मैं जानता हूं। और जबकि बाइबल सभी बातों में सही है, जो भी बातों के विषय में जो होने वाली है बताती है वो सब सही है। इसने भविष्यवाणी की है और मैंने इसे अपने जीवन में इसे प्रमाणित किया है कि यह सब सच है। मैं इसे भी स्वीकृत करता हूं कि इसमें नरक का जो विवरण है वो भी बिल्कुल सही है। और मैं इस आधार पर या इस आधार वाक्य पर काम करता हूं जो इस आधार वाक्य से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। मित्रों, यदि आपसे कहा जाता है कि आपके शहर में तूफान आने वाला है तो आप क्या करेंगे? इस सूचना को पाने के बाद आप में से कुछ लोग निकलकर कहेंगे, ओह, उन्होंने 10 साल पहले भी कहा था कि तूफान आने वाला है, लेकिन कोई भी तूफान नहीं आया। मैं सोचता हूं कि आप कहेंगे ठीक है, पर हो सकता है कि 10 साल पहले वो गलत थे, परंतु शायद वे इस समय सही हो, इसलिए मैं तूफान से बचने के स्थान में जाऊंगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक मूर्ख होते हैं। उस व्यक्ति के बारे में क्या है जो नरक के विषय में मसीह की चेतावनी का इनकार करता है? वह कहता है कि मैं अपना अवसर लूंगा। यदि वह गलत है तो यह बहुत ही बुरा होगा। हमारे प्रभु यीशु स्वयं सत्य को स्पष्ट करते हैं जब वे इस दृष्टांत को कहते हैं। तब वे कहते हैं, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के भट्ठे में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसके बाद हम गृह स्वामी के दृष्टांत को देखते हैं। कुछ लोग इस पद को दृष्टांत कहते हैं और कुछ लोग इसे दृष्टांत नहीं कहते हैं। जो भी हो, इस एक ही पद में एक महत्वपूर्ण संदेश हम सबों के लिए है। आइए हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 52 पद में, जहां पर लिखा है, और उसने उनसे कहा, इसलिए प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य की शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। मित्रों, यह बहुत ही व्यक्तिगत पद स्थल है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते और प्रचार करते हैं। मैं आपके सामने पुराना और नया दोनों को लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, ओह, ये सब बातें मैं पहले ही सुन चुका हूं। वास्तव में वे सुन चुके हैं, परंतु यह मेरा काम है कि मैं पुरानी चीज को सामने लाऊं, परंतु मैं कुछ नए विचारों को भी सामने लाने की आशा करता हूं। मित्रों, आगे हम देखते हैं कि यीशु अपने देश में वापस लौटते हैं और उसको अस्वीकार किया जाता है। इस दृष्टांतों को कहने के बाद यीशु अपने नगर नासरत की ओर चल पड़े, जो उनका अपना नगर था। हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 54 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, वह अपने नगर में आकर लोगों को उनके आराधनालयों में उपदेश देने लगा और वे चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक सामर्थ कहां से प्राप्त हुई। मित्रों, मैं आपका ध्यान पुनः उस ओर ले जाना चाहता हूं कि यीशु मसीह के दिनों में उन्होंने कभी भी यह प्रश्न नहीं किया कि वह चमत्कार कर सकता है या नहीं। उनका प्रश्न था कि इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक सामर्थ कहां से प्राप्त हुई, इतना ज्ञान उसने कहां से प्राप्त किया और वह कैसे इन बड़े कार्यों को कर सकता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 55 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं है? क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं? यही बात है जिसने उन्हें दुविधा में डाल दिया था। उन्होंने उसे नहीं पहचाना कि वह वास्तव में कौन था। उनके लिए वह मात्र एक बढ़ई का पुत्र था, और आज के दिनों में भी यीशु कुछ लोगों के लिए मात्र बढ़ई का पुत्र ही है। वे सोचते हैं कि वह एक महान शिक्षक, एक महान व्यक्ति, एक अद्भुत व्यक्ति था, परंतु उनके लिए वह मात्र एक बढ़ई का पुत्र था। हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 56 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो इस मनुष्य को यह सब कुछ कहां से प्राप्त हुआ? मित्रों, यह सच है कि प्रभु यीशु के भाई और बहनें थी, वे उसके आधे भाई और आधे बहन थे जो यूसुफ और मरियम के द्वारा बाद में उत्पन्न हुए और उससे छोटे थे। वे उस समय तक सही रूप से नहीं समझ पाए कि वह सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, जब तक कि मृतकों में से नहीं जी उठा। हम मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 57 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और उसके कारण लोगों को ठोकर लगी, पर यीशु ने उससे कहा, अपने नगर और अपने घर ही में नबी का निरादर होता है। आप यहां पर देखिए कि उसके नगर के लोग उससे और उसके परिवार के साथ अच्छी तरह परिचित थे कि वे उससे रूठे हुए थे। उन्होंने यह कहते हुए नाराजगी प्रकट की कि हम उसके परिवार को जानते हैं, वह हमारे मध्य में बड़ा हुआ, जो शिक्षा वह देता है कहां से उसे प्राप्त होती है। मित्रों, हम मत्ती सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 58 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ के अधिक कार्य नहीं किए। यहां पर एक अद्भुत प्रकाशन है। आप ध्यान दें कि उसके इस पृथ्वी पर रहते हुए इस रुकावट ने परमेश्वर के सामर्थ को सीमित कर दिया। यह उनका अविश्वास था और उनके अविश्वास के कारण वह बड़े और अधिक कार्यों को नहीं कर सका, या ऐसा नहीं था कि वह कार्य करने में असमर्थ था, परंतु उनके अविश्वास के कारण बहुत थोड़े ही चमत्कार के काम किए गए। मेरे प्रिय मित्र, आपके साथ और मेरे साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि हमारे पास विश्वास करने के लिए विश्वास नहीं है। और मैं स्त्री और पुरुष के उद्धार के लिए विश्वास के बारे में बातें कर रहा हूं। हमारे पास उस प्रकार के विश्वास की आवश्यकता है जो विश्वास करे कि मसीह खोए हुओं को बचा सकता है। वह आज आपके अपने शहर में सीमित हैं, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में और आपके स्वयं के जीवन में आपके अविश्वास के द्वारा सीमित हैं। और यह निश्चित रूप से मेरे लिए भी सच है। मित्रों, हमारा प्रभु यहाँ पर एक बहुत बड़ा वक्तव्य देते हैं, इसलिए आइए हम इसे नजरअंदाज न करें। इसी वक्तव्य के साथ हमारा 13 अध्याय यहाँ पर समाप्त भी होता है और अब हम अध्याय 14 में आगे बढ़ेंगे और उसके कुछ मुख्य विषयों पर ध्यान देंगे। आगे आगे चलने वाले यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हत्या, यीशु भीड़ से बचते हैं परंतु भीड़ उसका अनुसरण करती है, वह 5,000 लोगों को भोजन खिलाते हैं और अपने शिष्यों को समुद्र में तूफानों के बीच में भेजते हैं और तब वह पानी पर चलकर उनके पास जाते हैं। हम इन विषयों पर ध्यान करेंगे। मत्ती में यीशु को राजा के रूप में अस्वीकार करना और धार्मिक अगुओं के साथ उसका विवाद चल ही रहा है और यह अध्याय प्रकट करता है कि घटनाएं एक चरम बिंदु की ओर बढ़ रही हैं। हेरोद ने अपनी कसम को पूरा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कटवा दिया और यह ज्योति और सत्य की ओर प्रत्यक्ष रूप में विरोध है जो आखिरकार दुष्टों के हाथ यीशु पर पड़ने वाले हैं। हेरोद के दुष्ट हाथों को जबरदस्ती न करना पड़े इसलिए यीशु पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यीशु का समय अभी नहीं पहुंचा था। मित्रों, यदि हमें यीशु के द्वारा 5,000 लोगों को खिलाने के चमत्कार को लेखक के दृष्टिकोण से न्याय करने को कहा जाए तो निश्चय ही यह सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार है। यही चमत्कार है जिसे सुसमाचार के सभी लेखकों ने लिखा है। आइए हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हत्या को देखें। हम मत्ती सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, उस समय देश की चौथाई भाग के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यह मृतकों में से जी उठा है, इसलिए ये शक्तियां इसमें कार्य कर रही हैं। मित्रों, यदि आपको यह अंधविश्वासी की तरह लग रहा है तो आप सही हैं, यह अंधविश्वासी ही है, परंतु यह अंधविश्वास बाइबल का नहीं है और न ही यीशु का है और न ही उसके शिष्यों का है और न ही मसीहों का है। यह अंधविश्वास बूढ़े हेरोदेस का है और उन अशिक्षित लोगों का है जो उन दिनों में थे। किसी ने कहा, सच है कि आज हमारे समकालीन समाज में हम उनके जैसे अंधविश्वासी नहीं हैं। क्या हम नहीं हैं? आप ध्यान दीजिए कि कितने लोग हैं जो राशिफल और ज्योतिषी तंत्र की विधि का अनुसरण कर रहे हैं और धर्म की चमक हमारी आधुनिक संस्कृति में एक अद्भुत प्रभाव डाल रही है। मानव जाति मुख्यतः अंधविश्वासी है। मेरे प्रिय मित्र, जिस क्षण आप परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं तो आप अंधविश्वासी बन जाते हैं। यहां तक कि वे लोग जो अपने को निरीश्वरवादात्मक कहते हैं, वे भी गलत शिक्षा और वाद और प्रतिमा पूजा की ओर फिर रहे हैं, और हम आश्चर्य करते हैं कि इतने बुद्धिमान लोग उनमें शामिल हो सकते हैं। मित्रों, यीशु का व्यक्तित्व उसकी सेवकाई हेरोदेस राजा के ध्यान से नहीं बच पाई, वह जो सिंहासन पर था। हेरोदेस परिवार का एक सदस्य था, यह जानने के लिए आपको बाइबल के एक अच्छे शब्दकोश में देखना चाहिए। उसका पूरा परिवार ही धूर्तों का एक झुंड था और वे बहुत काले वर्ण के थे। वे पहले शताब्दी के माफिया लोग थे, और इस अध्याय का हेरोदेस भी इसमें अछूता नहीं है। इस अध्याय के कई पद फिर से दोहराए गए हैं जो पहले ही घट चुकी हैं। जब हेरोदेस ने यीशु के प्रचार के बारे में सुना तो वह तुरंत ही डर गया और अंधविश्वास से भर गया। हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा दिया था और वह यीशु को यूहन्ना के साथ जोड़ रहा था। हेरोदेस ने विश्वास किया कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, और उसका डर पागलपन में बदल गया क्योंकि वह यूहन्ना को पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहता था। हेरोदेस एक शराबी, भ्रष्ट, दूषित करने वाला कमजोर व्यक्ति, और वह एक हत्यारा था। उसने पहले ही यूहन्ना को, जो यीशु के आगे आगे चलने वाला था, मरवा दिया था, और अब प्रभु यीशु को मारने के लिए भी तैयार है। मित्रों, आगे के पद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मृत्यु के वातावरण के समय के हैं, जो पहले पद के एक भाग में है। तो मित्रों, यहाँ पर आज हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन इस विषय को हम अपने अगले अध्ययन में जारी रखेंगे। तब तक इस अध्ययन पर आप विचार करें कि आप कहाँ हैं, और अपने जीवन को प्रभु के निकट लाएं ताकि आप उसे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करें।
यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, कितना सुंदर है, कितना मधुर है, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।